ओम शांति। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन आपको मिलने जा रहा है, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। सभी लोग इसके बारे में बात करते हैं, राइट? कोई भी चर्चाएं होती हैं तो सभी लोग बोलते हैं, जैसे कि मैं बोल रही थी कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, जो भी चर्चाएं होती हैं सब लोग सोचते हैं कि ये दोनों का समन्वय होना चाहिए, है ना? और जो रिसर्च है उसमें साइंस भी होना चाहिए और स्पिरिचुअलिटी भी होना चाहिए, लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस पर काम करते हैं, और उनमें से ही एक हमारे कनिष्क शर्मा भाई जी हमारे सामने हैं, जो DRDO नई दिल्ली से हमारे बीच में आए हैं। डॉक्टर सुशील चंद्रा जी, जिनको आप जानते होंगे, हमारे सीनियर ब्रदर हैं, और DRDO न्यू दिल्ली में वो साइंटिस्ट हैं। सो कनिष्क भाई जी ने उनके सुपरविजन में रिसेंटली अपनी PhD कंप्लीट की है। एक ताली हो जाए अगर उनके लिए। उनका फील्ड ऑफ रिसर्च जो था PhD में, उसको बोलते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी। तो न्यूरोफिजियोलॉजी में उन्होंने fMRI, EEG, DTI जैसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके प्रॉपर साइंटिफिक मैनर में राजयोगा मेडिटेशन के ऊपर रिसर्च किया है, जो वो आपके सामने भी रखेंगे। और आपको पता है इसकी यूनिकनेस क्या है जो उन्होंने काम किया है? इसकी यूनिकनेस ये है कि राजयोग मेडिटेशन पे अभी तक सिर्फ 2 लोगों ने PhD कंप्लीट की है, और उनमें से एक हमारे कनिष्क भाई हैं। कनिष्क भाई जी का परिचय तो मैंने दिया कि वो DRDO से आए हैं, और अभी तक उन्होंने इंटरनेशनल जर्नल में 3 पब्लिकेशंस किए हैं, और रिसेंटली जापान, US और मलेशिया जाकर वो अपने काम को प्रेजेंट भी करके आए हैं। और आपके लिए एक सरप्राइज भी है, अगले 2 दिनों में मीटिंग में 15 मिनट का एक डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा इसी काम से रिलेटेड। EEG का जो इंस्ट्रूमेंट हमारी स्पार्क लैब में है, उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने किया जाएगा अगले 2 दिनों में। उसका प्रॉपर टाइमिंग्स आपको बता दिया जाएगा, लेकिन सरप्राइज ही होगा वो, ठीक है? अभी मैं माइक देती हूँ कनिष्क भाई को, वो अपना काम प्रेजेंट करेंगे। अभी तक राजयोग के ऊपर जितनी भी रिसर्च हो चुकी है वो सारी कनिष्क भाई आपके सामने रखेंगे। ओम शांति।
धन्यवाद मानसी बहन, धन्यवाद मानसी बहन। ओम शांति। मेरा बड़ा सुंदर सा परिचय मानसी बहन ने दिया, जिसके लायक बाबा ने मुझे बनाया है इस प्रेजेंटेशन में। अभी सुन पा रहे हैं सब लोग मुझे? पीछे तक सुन पा रहे हैं? ऑडियो थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज कर दीजिए भाई। अभी सुन पा रहे हैं? बढ़िया। कैसे हैं सब लोग? चार्ज्ड? बहुत सुंदर। तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने राजयोगा को एस्टेब्लिश करने के लिए जो स्टेप्स उठाए हैं, उसके द्वारा स्थूल में हम कितना काम कर पाए हैं, और आगे हमारा क्या प्लान है, किस प्लान के ऊपर किन स्ट्रेटेजीज को लेके हम राजयोगा को और अच्छे से, मजबूती से एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे वैज्ञानिक जगत में, उसके बारे में कुछ कुछ चीजें इस प्रेजेंटेशन में है। सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं राजयोगा की, तो राजयोगा केवल एक मेडिटेशन नहीं। जब हम इस विश्वविद्यालय में आते हैं, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो यहां से हम 2 चीज सीखते हैं, राजयोगा मेडिटेशन और पॉजिटिव थॉट्स। ये मेन चीज है, ये 2 मेन चीज जो हम सीखते हैं, इन 2 मेन चीजों को मिलाकर हम कहते हैं योगिक लाइफस्टाइल, जिसको अपने जीवन में, जिसका अनुसरण अपने जीवन में करके हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं और बाबा के दिए ज्ञान को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो जैसे जब हम पॉजिटिविटी और राजयोगा मेडिटेशन से योगिक लाइफस्टाइल एक पूरा मॉड्यूल बनाते हैं, तो सबसे पहले हम चेंज कहां पर लाते हैं? जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च करने से पहले यह जानना जरूरी है कि हम चेंज कहां पर ला रहे हैं, जिस चेंज को हम ऑब्जर्व कर सकें, और उस ऑब्जर्वेशन के बाद हम उस चेंज को लिख सकें या इंस्क्राइब कर सकें। तो सबसे पहले हम जो चेंज लाते हैं वो सेल्फ में लाते हैं, अपने आप में, स्वयं में जो परिवर्तन हम लाते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के रूप में, उस चेंज से हम सबसे पहले अपने परिवार में और चेंज लाते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में हम चेंज लाते हैं, एक दूसरे के संबंधों में चेंज आते हैं, सोसाइटी में हम चेंज ला पाते हैं, महिला सशक्तिकरण, बाकी और अलग अलग तरह से अलग निम्न वर्गों के सशक्तिकरण के लिए जो कार्य हम करते हैं, आप सोसाइटी के अलग अलग तबकों के लोगों को हम एम्पावर करते हैं, सोसाइटी का एम्पावरमेंट करते हैं और अल्टीमेटली हम यूनिवर्स को एक हैप्पी एंड ब्लिसफुल वर्ल्ड बनाते हैं। तो जब हमने इस रिसर्च की शुरुआत की तो सबसे पहले हमने कुछ क्रिटिकल एरियाज को ढूंढने की कोशिश की जिन पर हम मेडिटेशन को अप्लाई करके या योगिक लाइफस्टाइल को अप्लाई करके हम उनके प्रभावों को देख सकते थे। तो ये जो चार एरिया थे जिसमें हमने देखा मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स, अलग अलग तरह के जितने न्यूरोलॉजिकल या कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी इंक्लूडेड हैं, उन डिसऑर्डर्स पर, उन डिसऑर्डर पॉपुलेशन पर क्या इफेक्ट होता है वो हमने देखा। परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट के लिए स्पेशली डिफेंस सोल्जर्स के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहने वाले कई लोगों के लिए मेडिटेशन किस तरह से पॉजिटिविटी और स्ट्रेस रिडक्शन के लिए काम कर सकता है उसके बारे में कई लोगों ने रिसर्च किया है। हम भी कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं और कई जगह हमने छोटे प्रोग्राम्स और छोटे प्रोटोकॉल्स को रन करके कुछ रिजल्ट्स हमने पाए। सोशल साइंस रिसर्च में हम अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च और अलग तरह के कुछ सोशल लेवल पे जो चेंजेस आए हैं, सोसाइटी लेवल में जो चेंजेस आए, एनवायरमेंटल लेवल में जो चेंजेस आए, उन चेंजेस को हम एसेस कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी ऑगमेंटेशन स्पेशली कॉर्पोरेट्स में उनकी क्षमताएं बढ़ाने के लिए, क्योंकि कई कॉर्पोरेट्स में कई सारे लोग होते हैं जो डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट दोनों शिफ्ट में काम करते हैं, उसकी वजह से जो हमारे सर्कैडियन रिदम पर असर होता है, मतलब सोने जागने की जो हमारा क्रम है, जो इस क्रम में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन से उनके इमोशंस में, उनके बिहेवियर में जो चेंजेस होते हैं, उन बिहेवियर और इमोशनल चेंजेस को रिस्टोर कैसे करा जा सकता है उसके बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं। तो जब इन सारे क्रिटिकल एरियाज को हमने देखा, उसमें से एक क्रिटिकल एरिया पर मेरा रिसर्च है जिसको हम परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट कह सकते हैं। रिसर्च क्वेश्चंस जब हमने देखा तो क्या रिसर्च क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस को लेके हम अपने प्रोटोकॉल्स डेवलप कर सकते थे, क्या ऐसे रिसर्च क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर हम अपने रिसर्च को, हम अपने एक्सपेरिमेंट्स को एस्टेब्लिश कर सकते थे, तो जो दो मेजर क्वेश्चंस हमारे पास आए व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ एंड व्हाट आर द कॉन्शियसनेस इंडाइसेस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस, व्हाट आर द हाउ द कॉन्शियसनेस इज गेटिंग अफेक्टेड विद एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंट फैक्टर्स। एनालिसिस मेथड्स जो हमने यूज करे उसमें फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशल फैक्टर्स को इंक्लूड किया। इंटरप्रिटेशन में हमने पॉपुलेशन इफेक्ट्स को, सोशल इफेक्ट्स को, चेंजेस इन एनवायरमेंट्स और सब्जेक्टिव इफेक्ट को, इस तरह के चेंजेस को हमने ऑब्जर्व करके अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग तरह की रिसर्च करके इस तरह के चेंजेस को ऑब्जर्व किया और इंटरप्रेट करके कुछ रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश किया। तो सीधे आता हूं अपनी रिसर्च पर। जो स्पार्क में अभी सब लोगों को आपको पता होगा, पिछली बार की मीटिंग में इसको अनाउंस किया गया था, हमने 64 चैनल ईईजी जिसमें 24 बाइपोलर चैनल भी हैं जिसकी हेल्प से हम ईसीजी यानी कि हार्ट रेट वेरिएशन को, जीएसआर यानी कि हमारे, जब भी आप देखेंगे कभी भय की स्थिति होती है तो भय की स्थिति में पसीना आता है, तो जो पसीना आता है और ये जो चेंजेस होते हैं, इस चेंजेस को हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक चेंजेस। इन ऑटोनॉमिक चेंजेस को ऑब्जर्व करने के लिए जिस यंत्र की जरूरत होती है, जिस मापांक की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स। तो ईसीजी माने कि एचआरवी, गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स और इस तरह के कुछ 4-5 और इंडाइसेस को लेके इस मशीन से हम रिसर्च कर सकते हैं। और इस मशीन के आने के बाद से करीब 35 रिकॉर्डिंग हम कर चुके हैं जिसमें सारे ऐसे भाई और बहनों का रिसर्च हमने इंक्लूड किया है जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष से ऊपर अवधि में मेडिटेशन को रेगुलर प्रैक्टिस किया है। ये कुछ इसके कंपोनेंट्स हैं जिसमें हम देखते हैं एक एम्पलीफायर जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये ईजी कैप जिसको पहना के हम इसमें इस जेल को फिल करते हैं ताकि ये हमारे सर से एक कनेक्शन डेवलप कर पाए। इस कनेक्शन के डेवलप करने के बाद हम उस पर ईजी डेटा रिकॉर्ड करते हैं और जब ईजी डेटा रिकॉर्ड करते हैं तो इस तरह से हमारे पास एक ये जो डेटा एक्विजिशन सॉफ्टवेयर हमारे पास है उसमें हम देख पाते हैं कि डेटा की क्वालिटी क्या है। सबसे बड़ी बात, जब हम ईईजी रिकॉर्ड करते हैं तो ईईजी रिकॉर्ड करने के मायने क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज जरूरी है कि हम ईईजी रिकॉर्ड करें। तो ईईजी जो है वो एक डायरेक्ट ब्रेन एक्टिविटी होती है जो कि एक बहुत अच्छा और रिलायबल सोर्स होता है ब्रेन की एक्चुअल स्टेट को पता करने के लिए, ब्रेन के और माइंड के बीच में जो सिंक्रोनी है उसको पता करने के लिए, मोटर परफॉर्मेंस, इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड रिकॉल, अटेंशन एंड अलर्टनेस, इमोशन रेगुलेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप क्वालिटी और कॉन्शियसनेस के अलग अलग इंडाइसेस जो हैं उसको पता करने के लिए हम ईईजी डेटा को प्रोसेस करते हैं। एक दूसरी जो चीज है जो इस सिस्टम के साथ हमने ली है वो है इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल्स सिस्टम, जिससे हम ईआरपी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि ईईजी जो है उसके लिए हम 10 मिनट या 15 मिनट का एक लंबा सीक्वेंस रिकॉर्ड करते हैं, ईआरपी के लिए हमें मिली सेकेंड्स के सेगमेंट रिकॉर्ड करने होते हैं, यानी कि 100 मिली सेकेंड का एक सेगमेंट, 200 मिली सेकेंड का एक सेगमेंट या 500 मिली सेकेंड का एक सेगमेंट। अलग अलग लोगों ने जब कॉग्निशन पे काम करा और मेडिटेशन के इफेक्ट कॉग्निशन पे देखे तो उन्होंने पाया कि अटेंशन, इमोशन रेगुलेशन, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, यानी कि प्लानिंग, आपकी डिसीजन मेकिंग और मैथमेटिकल एनालिटिकल एबिलिटीज, इनमें बहुत फर्क आया। क्रिएटिविटी, मोटर कोऑर्डिनेशन भी कुछ इंडाइसेस थे जिसपे रिसर्च हुई। अब हमारे स्पार्क लैब के जो मेजर ऑब्जेक्टिव हैं जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं, उन मेजर ऑब्जेक्टिव्स में तीन मेजर ऑब्जेक्टिव्स को लेके अभी हम काम कर रहे हैं। और पहला ऑब्जेक्टिव है साइकोफिजियोलॉजिकल स्टेट्स ऑफ राजयोगा मेडिटेशन एंड इट्स वैलिडेशन। तो जो हमारी अलग अलग अवस्थाएं हैं, अलग अलग गुणों के अलग अलग गुणों को धारण करने के बाद, अलग अलग गुणों को सोचने के बाद जो हमारी मानसिक अवस्थाएं बनती हैं, उन मानसिक अवस्थाओं को ईईजी की हेल्प से एक सिग्नेचर अवस्था में डेमोन्स्ट्रेट कर पाए, उनका वैलिडेशन कर पाए, और अलग अलग तरह के जो इमोशनल स्टेट्स हमें उस दौरान महसूस होती हैं उनको हम वैलिडेट कर पाए, और साथ में ये भी बता पाए कि किस तरह की पर्सनैलिटी जरूरी है या किस तरह के एक राजयोगा को शुरुआत करने के लिए या राजयोगा मेडिटेशन में एक्सेल करने के लिए किस तरह की पर्सनैलिटी की जरूरत है, और क्या क्या भाव हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जो अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं या कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, उस तरह की चीजें भी हम साइकोफिजियोलॉजिकल रिसर्च की हेल्प से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मेडिटेशन का इफेक्ट इमोशनल हेल्थ पर क्या हो सकता है, कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इंडाइसेस में क्या हो सकता है, साथ में सोशल बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहा है, एक सोशल इम्पैक्ट के लेवल पर क्या चेंज आ रहा है, उसको भी हम साइकोलॉजिकल और सोशल साइंस रिसर्च के जो क्वेश्चनर टूल्स हैं उसके बेसिस पे एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। जब लंबे समय तक मेडिटेशन करते हैं, यानी कि 5 वर्ष या 10 वर्ष रेगुलर अभ्यास करते हैं, उससे हमारे ब्रेन में या हमारे बिहेवियर में क्या परिवर्तन आते हैं उसको हम क्वांटिफाई करने की कोशिश करेंगे। कम समय करने से क्या चेंजेस आते हैं या करने के जस्ट बाद करते समय क्या चेंजेस आते हैं उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, और क्या थ्रेशोल्ड रहेगा एक्टिव ब्रेन एक्टिवेशन का जो कि कॉग्निटिव इंडाइसेस के लिए हेल्पफुल रहेगा बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। यानी कि जब आप मेडिटेट करते हैं तो मेडिटेट करने से फॉर एग्जांपल आपके परफॉर्मेंस में क्या चेंज आते हैं, अगर सैनिक है कोई स्पोर्ट्स पर्सन है उनका जो डोमेन है, जैसे मैंने बताया आपको मेरा डोमेन परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट है, तो परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट करने के लिए उनका माइंड स्टेबल होना बहुत जरूरी है। लेमेन वर्ड्स में माइंड स्टेबिलिटी का मतलब जब कॉग्निटिव प्रोसेस को हम कंट्रोल कर पाते हैं, अपने इमोशंस को हम कंट्रोल कर पाते हैं, और इमोशंस को कंट्रोल करने के बाद हम अपने जो भी अवस्थाएं आती जाती हैं उन अवस्थाओं को सुचारू रूप से एक्सेप्ट कर पाते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद उसको रिस्पॉन्ड करते हैं ना कि रिएक्ट करते हैं। तो जब हम उसको उसके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं तो उस रिस्पॉन्स से वो जो रिस्पॉन्स जनरेशन होता है वो उस रिस्पॉन्स जनरेशन से हमारी परफॉर्मेंस एनहेंस होनी चाहिए, ऐसा हम रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। तो जो करंट रिसर्च है उसमें हमने फिजियोलॉजी डेटा और साइकोलॉजी डेटा को मर्ज करके कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट जानने की कोशिश की। मैंने अपने पीएचडी के रिसर्च के दौरान भी इसी को करने की कोशिश की, जिससे हमने एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्शियसनेस और अटेंशन नेटवर्क इंडेक्स, जिसमें कि हम कहते हैं कि किसी समय अगर हम एक अवस्था में बैठे हैं तो कितना ध्यान हम कर सकते हैं, उस ध्यान से अगर हमारे पास कोई स्ट्रेसर्स आ रहे हैं या कोई डिस्ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, कुछ किसी वस्तु या कोई किसी के बोलने से या किसी के सामने से निकलने से जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, उस डिस्ट्रैक्शन के बाद दोबारा वापस हम उस अवस्था में कितनी जल्दी आ पाते हैं, जिसको हम ओरिएंटेशन बोलते हैं। और साथ में ये डिसीजन मेकिंग करना है कि हमारी जो अवस्था है उस अवस्था में हम कितनी देर तक रह सकते हैं और उस अवस्था को कितनी देर बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह का जो हमारा अटेंशन नेटवर्क इंडेक्स है, इसके बारे में कुछ रिसर्च किया है। स्ट्रेस इंडेक्स, कॉग्निटिव कंट्रोल और पर्सनैलिटी इंडेक्स, ये कुछ तीन और चीजें हैं जिसके बारे में हम अभी कुछ और रिसर्च प्रोटोकॉल बना रहे हैं, और इन रिसर्च प्रोटोकॉल के द्वारा हम इन चीजों को एस्टेब्लिश करेंगे कि मेडिटेशन से इन चीजों पर, स्पेशली स्ट्रेस इंडेक्स पे, कॉग्निटिव कंट्रोल पे और पर्सनैलिटी इंडेक्सेस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जो करंट रिसर्च, जैसे मैंने आपको बताया, कंफर्मेशन ऑफ डिफरेंट मेडिटेशन स्टेट्स ऑफ राजयोगा मेडिटेशन, राजयोगा मेडिटेशन का एज अ फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस क्या है, अलग अलग केस स्टडीज को लेके उनके इंटरव्यूज करना और उनके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में लिखना, और साथ ही अलग अलग फिजियोलॉजिकल स्टेट्स को डिस्क्राइब करना। कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं जिसको हमने इस प्रोटोकॉल में लिया है, कूपर स्मिथ इन्वेंट्री, ऑक्सफोर्ड हैप्पीनेस क्वेश्चनेयर और स्पिरिचुअलिटी इंडेक्स ऑफ वेलबींग। साथ में बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री, जो कि 21 क्वेश्चंस का एक इंडेक्स क्वेश्चनेयर इंडेक्स होता है, जिसको हमने लिया है, और साथ में पीजीआई हेल्थ क्वेश्चनेयर, सेटिस्फेक्शन विद लाइफ स्किल को भी हमने लिया है। ये सारे जो तीन, ये छह स्केल्स हैं, इसको हर एक स्केल को भरने में करीब 1 से 2 मिनट और कुछ स्केल्स को भरने में थोड़ा समय, तो लगभग 20 मिनट के आसपास का, 20 से 25 मिनट के आसपास का ये प्रोटोकॉल है, जो कि साइकोलॉजिकल इंडाइसिस को पूरा करने के लिए। अब कुछ प्रीवियस रिसर्च जो हमने किया है, जिसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट से जो रिसर्च हुआ है, डीआरडीओ के द्वारा जो रिसर्च हुआ है, निमहंस के द्वारा जो रिसर्च हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइनल इंजरी सेंटर्स के द्वारा जो रिसर्च हुआ है, उसके द्वारा कुछ कुछ ग्लिम्सेज हैं, इफेक्ट्स ऑफ राजयोगा मेडिटेशन और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स एंड केयर गिवर। ISIC करके एक संस्था है दिल्ली में, वसंत कुंज में, जहां पर स्पाइनल इंजरीज के पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। 2011 से यह हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसमें अलग अलग लेवल पर हमने कुछ चेंजेस देखे और वहां पर केयर गिवर्स को, पेशेंट्स को और साथ में हॉस्पिटल के स्टाफ को मेडिटेशन का ज्ञान दिया गया और राज्यों का कोर्स कराया गया। 7-day कोर्स कराने के बाद उसके फॉलोअप्स लिए गए और रेगुलर इस चीज के फॉलोअप्स लिए गए, और उसके पश्चात हमने क्वेश्चनेयर्स के द्वारा, ऑब्जर्वेशंस के द्वारा और फीडबैक फॉर्म्स के द्वारा इसके प्रभावों को जांचने की कोशिश की। जो हमें रिजल्ट्स मिले उसमें हमने देखा कि सफरिंग जो था, जो रोग का जो प्रभाव था, जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से जो दर्द होता था, उस दर्द की वजह से जो परेशानियां होती थी पेशेंट्स को, वो कम हुई, और साथ में पेशेंट को देखते हुए जो भावों में परिवर्तन होता है केयर टेकर्स में, स्पेशली जब आप देखते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। जब किसी पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं तो पेशेंट को तो हम ट्रीट करने की कोशिश हमेशा करते हैं डॉक्टर्स, केयर गिवर्स को ट्रीटमेंट के लिए कुछ नहीं होता, तो केयर गिवर्स को यहां पर ट्रीटमेंट नहीं बट एक मेडिटेशन इंटरवेंशन दिया गया, और ये देखा गया कि केयर गिवर्स के होप स्केल में, उनके बिलीफ में, उनके हैप्पीनेस इंडेक्स में और उनके सेटिस्फेक्शन में क्या चेंजेस आए। तो इन सारे स्केल्स में हमने देखा कि हमने बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पाए, और एटीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़ी बात थी जो हमने देखी इसमें। दूसरा रिसर्च जो रजनीकांत भाई ने निमहंस में किया, जिसमें उन्होंने एक बहुत नोवल टेक्निक को यूज करते हुए, जो कि बिल्कुल बहुत ही एक्सेप्शनल टेक्निक है, जिसको हम कहते हैं EEG FMRI, ये दो तकनीकों का मिश्रण है, जिसमें हम ईजी, जो जैसे हम यहां पर ईजी करते हैं, उस ईजी के साथ में FMRI मतलब फंक्शनल MRI को डेमोन्स्ट्रेट करके हम साथ में देखते हैं कि किस तरह के ब्रेन में चेंजेस आए विद रिस्पेक्ट टू सोर्स लोकलाइजेशन, यानी कि ड्यूरिंग मेडिटेशन कौन कौन से रीजन्स थे ब्रेन में जो एक्टिवेट हुए, जिसको हमने प्री एस्टेब्लिश करा था रिसर्च द्वारा ईईजी से, और इन दोनों चीजों को मिला के उन्होंने एक साथ इस प्रोटोकॉल को रन किया। तो उन्होंने देखा कि उनका जो मेडिटेटर्स के ब्रेन है उनमें ब्रेन स्टेबिलिटी बढ़ी है, रूमिनेटिव थॉट्स इन मेडिटेशन जो है मेडिटेटर्स है जो वो कम हो गए हैं, डीएमएन एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो गई है। तो डीएमएन एक्टिविटी दो तरह से हम मान सकते हैं, डीएमएन एक्टिविटी जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिविटी होती है जिस समय हम कुछ कोई भी काम नहीं कर रहे होते हैं, एक्टिवली सोच नहीं रहे होते हैं, एक्टिवली कोई फिजिकल या मोटर टास्क नहीं कर रहे होते हैं, उस समय हमारा ब्रेन, हमारे ब्रेन के कुछ सेंटर्स हैं जो काम करते हैं, जो कि रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी को और हमारे कॉग्निटिव इंडेक्स को, उस ड्यूरेशन में उन्होंने देखा। इस तरह से उन्होंने ईजी एफएमआरआई प्रिपरेशन अपनी लैब में किया, जैसे आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में उन्होंने ईजी कैप पहना के उसको वैलिडेट किया और साथ में राइट साइड में जो एफएमआरआई स्कैनर है उसके अंदर पेशेंट्स को और मेडिटेटर्स को डाल के और उसके अंदर हमने स्कैन, करीब 30 से 40 मिनट का इस स्कैन का समय लगता है, उस स्कैन को उन्होंने लिया। तो ये एक बहुत अच्छा रिसर्च उन्होंने पब्लिश किया 2016 में, जिसमें उन्होंने इन सारी चीजों को विस्तृत रूप से दिखाया है। एक दूसरा रिसर्च जो कि बहुत बड़े लेवल के जर्नल में पब्लिश किया अजय भाई ने, जस्ट अ मिनट मेडिटेशन, जिसमें केवल एक मिनट मेडिटेशन से क्या रैपिड चेंजेस होते हैं ब्रेन में उसको एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने इस पेपर को लिखा। ईजी में क्या चेंजेस होते हैं जो कि हमने डीआरडीओ में एक रिसर्च किया और उसका डेटा यही ज्ञान सरोवर में रिकॉर्ड किया था, जिसमें हमने देखा कि अल्फा और थीटा बैंड जो होते हैं जो कि लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं, जिसका अगर ये बैंड अल्फा और थीटा बैंड का पावर इंक्रीज होता है तो उस समय हम कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन और हमारी इंट्रिंसिक अवेयरनेस यानी कि अपने स्वयं के प्रति हमारी अवेयरनेस इंक्रीज होती है। और पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन हमने अटेंशन नेटवर्क्स पे भी देखा कि अटेंशन नेटवर्क से इंडेक्स पे जो हमने साइकोलॉजिकल टेस्ट किया उसमें क्या चेंजेस आए, उसके चेंजेस के लेवल पर हमने एस्टेब्लिश किया कि अटेंशन नेटवर्क्स में और अदर कॉग्निटिव इंडेक्सेस में चेंजेस पाए गए। ये एक दूसरा रिसर्च जो कि अपने आप में एक यूनिक रिसर्च है, इसमें हमने एस्टेब्लिश किया कि लॉन्ग टर्म मेडिटेशन के द्वारा हमारा जो कॉर्पस कैलोसम रीजन है जो कि हमारा लेफ्ट ब्रेन को राइट ब्रेन से कनेक्ट करता है, जो एक ब्रिज का काम करता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी प्रॉपर्टीज हमें एनहेंस्ड पाई गई। जो FARMD ये दो चीजें होती हैं जिसको हम एक सिग्नेचर मानते हैं अच्छी, अगर FA बढ़ता है और MD घटती है, फ्रैक्शनल एनाइसोट्रोपी और मीन डिफ्यूजिविटी। तो डिफ्यूजिविटी घटती है इसका मतलब जो सिग्नल ट्रांसमिशन होता है ब्रेन में माने कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर वो अच्छा है, वो प्रभावी रूप से सुचारू रूप से चलता है। साथ ही FA जैसे इंक्रीज होता है तो FA जैसे आप कहेंगे न्यूरॉन्स, अगर किसी ने बेसिक स्टडी करा हो तो न्यूरॉन्स के ऊपर एक माइलिनेशन होता है, माइलिन शीथ होती है, माइलिन शीथ जो है वो लिपिड की बनी होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक वायर्स हैं या फिर अगर टेलीकम्युनिकेशन के कुछ लोग हों तो टेलीकम्युनिकेशन जो केबल्स, कम्युनिकेशन केबल्स होती हैं उस पर जितना अच्छा इनशीथिंग होता है, जितना अच्छा एनरैपिंग होता है, उतना अच्छा सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उतना कम एनर्जी लॉस होता है। तो ये सारी चीजें ब्रेन लेवल पर भी अप्लाई होती हैं। तो इन सारे चेंजेस को हमने देखा और हमने ये पाया कि इमोशंस, अटेंशन और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस का बेटर रेगुलेशन मेडिटेशन के द्वारा संभव है। ये एक रिसर्च जो मैंने अभी नवंबर के महीने में वॉशिंगटन में प्रेजेंट की थी। DIPR के द्वारा भी एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया गया जिसमें होप स्केल, हैप्पीनेस इंडेक्स और कॉग्निटिव फंक्शंस को बढ़ा हुआ पाया गया। कुछ पोस्टर्स जो हमने अलग अलग समय पर अजय भाई ने, रजनीकांत भाई ने या फिर मैंने प्रेजेंट किए, उन सारे पोस्टर्स का एक ग्लिम्स है। हमारे जो नेशनल कोलैबोरेशंस हैं DRDO के द्वारा, स्पार्क के नेशनल कोलैबोरेशन, DRDO, निमहांस, एम्स, NDMA, किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी और इंडियन स्पाइन इंजरी सेंटर से हैं। फॉरेन कोलैबोरेशन हमने पिछले 2-3 महीनों में प्रयास किए और इन प्रयासों के दौरान हमें एक स्विट्जरलैंड के ब्रेन माइंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख का जो इंस्टीट्यूट है उसके प्रोफेसर आर्चमैन और प्रोफेसर पास्कल फेबर के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ है, जो भी ईईजी डेटा यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे उस ईईजी डेटा के ऊपर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ग्राफ थ्योरी एनालिसिस और सोर्स लोकलाइजेशन, यानी कि ब्रेन में कौन कौन से सोर्स हैं जो एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं ड्यूरिंग मेडिटेशन या कंट्रोल ड्यूरिंग जिस समय हम रेस्टिंग स्टेट में रहते हैं, तो उस समय पर उस तरह की रिसर्च के लिए फॉरेन कोलैबोरेशन हमने किए हैं। कोमा ग्रुप, जहां पर कोमा साइंस ग्रुप जो यूनिवर्सिटी ऑफ लीज बेल्जियम में है, जहां पर रजनीकांत भाई पहुंचे हैं अपनी पीएचडी करने के लिए, वहां से भी प्रयास जारी है, और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पेट्रोनॉस मलेशिया से भी इन प्रयासों को हमने जारी रखा है, और आशा है आने वाले समय में इनसे भी हमारे साथ कोलैबोरेशन संभव होंगे। तो अब सबसे बड़ी जो जरूरत है इस समय की, स्पार्क लैब को आवश्यकता है कुछ ऐसे भाइयों बहनों की जो अपना समय सुचारू रूप से यहां पर योगदान दे सकते हैं और लंबे समय के लिए यहां पर रहकर सेवाएं दे सकते हैं। तो जब हम मेडिटेट करते हैं, जब इस डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, तो डेटा रिकॉर्ड करने के बाद जो डेटा हम एनालिसिस करते हैं, इस एनालिसिस के लिए हमें कुछ स्पेशल टेक्निक को सीखना होता है, और उस स्पेशल टेक्निक में जो एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है जिस पे हमें प्रोग्रामिंग सीखनी होती है, उसको बोलते हैं हम मैटलैब। तो मैटलैब ज्यादातर बीटेक स्टूडेंट्स जो कि इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन बैकग्राउंड के होते हैं, कुछ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो सकते हैं, ऐसे भाइयों बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि आज या कल जब भी हो मुझसे या श्रीकांत भाई से एक बार संपर्क करके अपने इंटरेस्ट के बारे में बताएं, और अगर वो अपनी सेवाएं दे सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, साइकोलॉजी बैकग्राउंड के, न्यूरोसाइंस बैकग्राउंड के और इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन बैकग्राउंड के जो भी भाई बहन हैं, अगर वो अपनी सेवाएं दे सकते हैं यहां पर, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से जो हम रिसर्च कर रहे हैं, उस रिसर्च को एस्टेब्लिश करने के लिए सतत रूप से प्रयास जारी रहेंगे, और पब्लिकेशंस, पेटेंट्स और साथ में इन सारे राजयोगा मेडिटेशन को किसी अलग डोमेन में एस्टेब्लिश करना, यानी कि एज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम उनको एस्टेब्लिश करना, डिफेंस में, स्पोर्ट्स और बाकी अलग फील्ड्स में जहां पर परफॉर्मेंस की आवश्यकता होती है, ऐसे हमारे प्रयास जारी रहेंगे। ओम शांति।
नाउ लेट्स एक्सपीरियंस द प्योर फीलिंग्स थ्रू म्यूजिक, एंड फॉर दैट आई इंट्रोड्यूस ब्रदर डेविड। Brother David is from Australia. He came into Gyan in 1984 and he is into Gyan for more than 33 years. He is surrendered in Gyan Sarovar for 22 years. He is a self-taught artist and musician. He has been gifted to play more than 60 instruments from different countries. And today you can see him playing more than 21 different instruments. So, enjoy your musical evening with Brother David. Please welcome Brother David.